हाँ जी, हमने आज की क्लास में शुरू किया अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 128 हमने खत्म किया, आज 129 खत्म किया, 130 खत्म किया एंड 131 खत्म किया है, उसके अलावा 134 को भी हम शुरू कर चुके थे। चलिए आज हमने चर्चा की 128 की, वो क्या कहता है 128 की, हर कंपनी को बनाना पड़ेगा और रखना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलेवेंट बुक्स। अदर रेलेवेंट बुक्स का मतलब कंपनी के वाउचर्स, कंपनी के मिनट्स वगैरह, ये सब रखने पड़ेंगे और ये ऐसे होने चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकें कंपनी के बिजनेस का, स्टेट ऑफ द बिजनेस का। ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखे जाएंगे और ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होने चाहिए, साथ में मैं कह सकता हूं कि ये एक्रूअल बेसिस पे होने चाहिए, कैश सिस्टम पे नहीं, ऑन एक्रूअल बेसिस, यानी कि कैश बेसिस पे नहीं होंगे, ये होंगे तो किस पे, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस तो अलाउ ही नहीं है कंपनी के लिए। आगे, सच बुक्ड मे बी कैप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड डिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, मगर अगर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहती है तो इंटीमेशन आरओसी को देनी पड़ेगी कम से कम 7 दिन में फॉर्म नंबर AOC-5 के थ्रू, ठीक है जी। आगे कहते हैं, लॉ कहता है कि कंपनी इन बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकती है। यहां पर हमारा एक रूल नंबर 3 है जो हमने सेक्शन के साथ ही मर्ज करके पढ़ा। रूल नंबर 3 कहता है कि बुक्स और रेलेवेंट बुक्स अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो वो ऐसे होने चाहिए जो कि एक्सेसिबल इन इंडिया हो, मतलब इंडिया के अंदर देखे जा सके, प्लस उनका बैकअप जो है वो इंडिया में आ सके, बैकअप टू बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, उनका बैकअप जो है वो इंडिया में आ सके, प्लस वो बैकअप सर्वर में लोकेट भी हो सके, वो सर्वर जो कि इंडिया के अंदर है ऑन द पीरियोडिक बेसिस। यहां पीरियोडिक बेसिस का मतलब क्या है, यहां पीरियोडिक बेसिस का मतलब है अगर मैं रूल 4 के साथ मिला के इसे पढ़ूंगा तो रूल 4 के साथ मिला के इसे पढ़ने पर इसका मतलब पता है लगता है क्वार्टरली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस, ये रूल 4 पढ़ने पे मुझे पता लगेगा जो अभी मैं आगे पढ़वा रहा हूं। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकती है जो कि एक्सेसिबल इन इंडिया होने चाहिए, प्लस बैकअप इंडिया में जिनका अवेलेबल हो, प्लस ये फिजिकली लोकेटेड हो, इनका सर्वर इंडिया में होना और ये इंडिया में इनकी जो बैकअप वगैरह है वो पीरियडिकल बेसिस पे भेजा जाए। आगे, अगर कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस या तो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है तो फिर जो भी ब्रांच में ट्रांजेक्शन होंगी वो ब्रांच में ही रखा जाएगा वो रिकॉर्ड, बट ब्रांच की समराइज रिटर्न बनाकर पीरियोडिक बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर अदर ऑफिस जो कि हमने पहले 128(1) में अभी पढ़ा वहां पर आपको भेजना पड़ेगा। अब यहां पर पीरियोडिक बेसिस का मतलब क्या है, अगर मैं रूल 4 पढ़ू तो रूल 4 कहता है अगर वो आउटसाइड इंडिया है अगर आपका ऑफिस तो आउटसाइड इंडिया के लिए ये हो जाएगा रूल 4 लग जाएगा और रूल 4 के अंदर इसका मतलब हो जाएगा क्वार्टरली बेसिस, बट अगर इन इंडिया है तो फिर रूल 4 साइलेंट है यहां पर, तो वहां पर उसका मतलब हो जाएगा केवल पीरियोडिक बेसिस। आगे, बुक मेंटेन्ड विद इन इंडिया, ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर एड्रेस, वही का वही, बाय द डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। मैंने फिर कहा कि इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी, क्या सब्सिडरी की बुक का इंस्पेक्शन हो सकता है, यस, किसके द्वारा, बाय द पर्सन ऑथराइज्ड। पर्सन ऑथराइज्ड कौन होगा, क्या वो डायरेक्टर होना जरूरी है, नहीं, लिखा है पर्सन, पर्सन का मतलब अदर देन डायरेक्टर भी हो सकता है, अदर देन डायरेक्टर वो भी हो सकता है थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। बट यहां पर मैंने एक नई चीज आपको और बताई, वो क्या, कि क्या मेंबर्स भी कंपनी की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, द आंसर इज यस, हां कर सकते हैं। अगर मेंबर्स बुक्स का इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बात, मेंबर्स को इंस्पेक्शन का राइट जो है वो टेबल एफ देता है और टेबल एफ का रेगुलेशन 89 सब रेगुलेशन नंबर 2, मैं कह सकता हूं रेगुलेशन 89 सब रेगुलेशन नंबर 2 टेबल एफ ऑथराइज करता है मेंबर को कि मेंबर आप भी चाहो तो बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकते हो, मगर ये इंस्पेक्शन की पावर मेंबर्स को कौन देगा, या तो लॉ देगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे या फिर जनरल मीटिंग के अंदर अगर मेंबर्स को ये पावर मिलेगी तो मेंबर भी चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो अगर आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या मेंबर कंपनी की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, तो आप कहेंगे दो केसेस में कर सकता है। पहला, होल्डिंग अपनी सब्सिडरी की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकती है अपने किसी व्यक्ति को ऑथराइज करके। दूसरा, मेंबर बाकी केसेस में मेंबर कर सकते हैं टेबल एफ के रेगुलेशन 89(2) के द्वारा, अगर लॉ उन्हें अलाउ करता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउ करते हैं, जनरल मीटिंग अलाउ करती है। क्लियर हो गई इतनी बात, दो चीजें आएंगी मेंबर्स के इंस्पेक्शन पर। आगे, फिर हमने कहा रूल 4, वो कहता है समराइज रिटर्न ऑफ द बुक्स आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड ऑफिस पे या भेजी जाएंगी एट द क्वार्टरली इंटरवल। अगर आउटसाइड इंडिया कोई चीज बना रहे हो तो वो इंडिया में क्वार्टरली इंटरवल पे भेजी जाएगी, जिसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको यहां पे भी दिया था। ठीक है जी, आउटसाइड इंडिया की बात की है उसने, इन इंडिया की बात नहीं की, तो इन इंडिया में पीरियडिक बेसिस कहा। डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए आउटसाइड इंडिया से कोई, और कंपनी को ये इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट डायरेक्टर तुम खुद तो कर सकते हो, बट किसी पावर ऑफ अटॉर्नी या एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। फिर उसके बाद हमने किया सबसेक्शन 5, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 8 फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट ईयर की मेंटेन करनी पड़ेगी। बट जहां कंपनी की एग्जिस्टेंस ही 8 साल से कम है तो उतने पीरियड की करनी पड़ेगी। अगर कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉन्गर पीरियड भी बता सकती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी के MD, WTD प्लस CFO इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इंप्रिजनमेंट 1 साल तक, फाइन लग सकता है मिनिमम 50,000 से 5 लाख तक, और दोनों लग सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन 129, फिर हमने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो और शेड्यूल 3 का पालन किया जाए। आगे सबसेक्शन 2 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर AGM के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंबर्स के सामने ले मतलब रखेगा। सबसेक्शन 3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो कहता है कि इफ द सब्सिडरी और सब्सिडरीज कंपनी की सब्सिडरी या सब्सिडरीज हैं तो फिर कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उसने अपनी बुक्स बनाई है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हर AGM के सामने रखनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टेटमेंट इन AOC 1 भी जाएगी जिसमें कि अपनी सब्सिडरी के साइलेंट फीचर आएंगे। तो यानी कि रिजल्ट क्या बना, आपको अपने खुद के फाइनेंशियल रखने पड़ेंगे प्लस CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी प्लस AOC 1 रखना पड़ेगा, 3 डॉक्यूमेंट अपने मेंबर्स के सामने रखने पड़ेंगे। यहां पर इसका मतलब है, ये कहता है सब्सिडरी इस सेक्शन के लिए एसोसिएट भी है, यानी कि अगर खाली आपकी एसोसिएट है सब्सिडरी नहीं है तो भी कंसोलिडेशन होगा। आंसर इज यस, हां तब भी होगा। कंपनी If not required to prepare consolidated financial statement to comply schedule 3, अगर कंपनी को accounting standard पालन नहीं करना है, not required to prepare consolidated financial statement कैसे, as per accounting standard, अगर कंपनी को as per the accounting standard consolidated financial statement बनाने की जरूरत नहीं है तब भी इस कंपनी को schedule 3 का तो पालन करना ही करना पड़ेगा, schedule 3 से मुकर नहीं सकते आप तब भी। आगे हालांकि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार की लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है ये। आपको कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक होली ओन सब्सिडरी या फिर पार्टली ओन सब्सिडरी हैं किसी और कंपनी की, और आपके सभी के सभी अदर मेंबर का मतलब आपकी होल्डिंग कंपनी को छोड़कर बाकी जो मेंबर बचे हैं उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दे दी है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना भी बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर कंपनी के मेंबर्स कह देते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना भी बने तो लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, आपकी कोई भी सिक्योरिटी कहीं भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर लिस्ट नहीं है, और आपकी अल्टीमेट कंपनी अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी अल्टीमेटली बना रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक तरीके से लॉ मेकर्स ने कहा कि भैया अगर मैं कहता हूं एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, वाई लिमिटेड, अगर ये 3 कंपनियां हैं तो एस लिमिटेड आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी बना देगी, मगर शर्त यह है कि एस लिमिटेड आप अनलिस्टेड कंपनी हो, और दूसरा आपके शेयर होल्डर एच लिमिटेड को छोड़कर बाकी शेयर होल्डर आपको NOC दे दें। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट कहता है ऑल द प्रोविजन प्रिपरेशन में, एडॉप्शन में और ऑडिट में टू कंप्लाई टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। बट इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि ऑडिटर भी सेम व्यक्ति करेगा, नहीं, ऑडिट अलग व्यक्ति कर सकता है। आगे कोई भी डेविएशन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हुआ तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या नेचर ऑफ डेविएशन क्या है, रीजन क्या है, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा। अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो MD, WTD और CEO और इन एब्सेंस ऑफ ऑल डायरेक्टर पनिशेबल, अगर ये नहीं है तो फिर सारे डायरेक्टर पनिशेबल होंगे। कितना? इंप्रिजनमेंट 1 साल, फाइन 50,000 से 5 लाख, और बोथ मैं कह सकता हूं और। फिर आज की क्लास में हमने किया सेक्शन 130 जो कहता है रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट ऑन द ट्राइब्यूनल और द कोर्ट्स ऑर्डर। मैंने रिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल दिया जो जापानीज कंपनी थी, सत्तम स्कैम के बाद एकदम ये घटना घटी थी, बैक टू बैक ये घटनाएं घटी थी, जिसमें रिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कंपनी के अपने अकाउंट्स ही नहीं बनाए थे, और जो अकाउंट्स बनाए थे उन्हें शेयर होल्डर, उन अकाउंट्स पर शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन थी कि ये गलत है, फ्रॉडुलेंट नेचर के हैं। कंसिक्वेंटली लॉ मेकर्स ने जब इस बार लॉ फ्रेम किया तो कोर्ट को ये पावर दी, ट्राइब्यूनल को ये पावर दी गई कि ट्राइब्यूनल आप चाहो और आपको लगे कि अगर ये अकाउंट जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हैं तो आप इन अकाउंट्स को दोबारा रीओपन करवा सकते हो। कोर्ट और ट्राइब्यूनल को ये पावर दी गई है इस बार सेक्शन 130 के द्वारा, मगर कब, जब एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट और ट्राइब्यूनल को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, कोई और अथॉरिटी, जैसे कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 212 के अंदर आएगा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, और या फिर कोई भी पर्सन कंसर्न है, अगर वो ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हैं या कंपनी कंप्लीटली मिसमैनेज्ड है जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं किया जा सकता, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन देने वाला है इसे कहेगा कि बेटा अपना रिकमेंडेशन दे कि क्या गड़बड़ है, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ट्राइब्यूनल उन अकाउंट को रिवाइज करवाएगा और जो भी रिवाइज अकाउंट है वही फाइनल माने जाएंगे। इसके बाद हमने किया सेक्शन 131, ये क्या कहता है, ये कहता है वॉलंटरीली डिस्क्लोजर और इनकम स्कीम की तरह है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वॉलंटरली डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम थी। ये कहता है कि अगर कंपनी को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई है, सेक्शन 129 को कंप्लाई नहीं कर पाए, और सिमिलरली अगर बोर्ड रिपोर्ट में कोई कंटेंट मिसिंग रह गया 134 को कंप्लाई नहीं कर पाए, और कंपनी क्या कर सकती है, अपने पिछले 3 साल के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से रिवाइज करवा सकती है, मगर इसके लिए कंपनी तुम्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल तुम्हारी एप्लीकेशन पे अगर लगता है कहता है कि ठीक है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ट्राइब्यूनल तुम्हें अलाउ करेगा, तभी केवल रिविजन कर सकते हो, मगर ट्राइब्यूनल अपने इस ऑर्डर की कॉपी आरओसी प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटी को जरूर देगा कि ताकि ये इस कंपनी का ध्यान रखे कि अब ये क्या रिविजन होने वाला है। कंपनी जब रिवीजन करेगी तो रिवीजन करने के बाद जो भी आपकी एजीएम होने वाली है वहां पर आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने यह चेंज किया है, क्यों किया है और इस चेंज का इंपैक्ट क्या है, यह आपको बताना पड़ेगा अपनी आने वाली एजीएम के अंदर। तो यह हमने सेक्शन 131 किया। 130 और 131 में फर्क क्या है, 130 के अंदर ट्राइब्यूनल रिवीजन करवाता है, 131 के अंदर आप खुद रिवीजन करते हैं। अब आया 134, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, इनके सिग्नेचर की हमने बात की है, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सिग्नेचर की आज हमने बात की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सिग्नेचर किसके होने चाहिए, अगर कंपनी में चेयरपर्सन है और वो ऑथराइज्ड है तो फिर उसके द्वारा, और अगर ऑथराइज नहीं है तो फिर दो डायरेक्टर जिनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा, एंड उसके बाद फिर सीईओ प्लस सीएफओ प्लस कंपनी सेक्रेटरी। यहां तक आज की क्लास में हमने किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।